ಕಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಯಶೋದನಂದನ ವ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಶೋದನಂದನ ವ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Radha Gokula Nanda Radhe, Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe, Jaya Jaya Jagannath. Jagannath Baladev Subhadra, Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Jai Om Vishnupad Paramhansvari Vrajakacharya Stotarishat Shri Srimadabhai Charanaravind Bhakti Vedanta Swami Shila Prabhupada Ki ISKCON Divinity Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramhans Parivrajaka Acharya Stotarishat Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Upasthit Bhakta Vrinda Ki Jai Upasthit Bhakta Vrinda Ki Jai उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप लोग आगे बैठ सकते हैं, पीछे जगह नहीं है, आगे काफी जगह है, अतिज लोग जो सब पीछे बैठे हैं। तो महाभारत की कथा हम लोग जारी रखेंगे। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि हम लोगों को भागवत में जो भी कथाएं आती हैं उनको बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए, साथ ही साथ रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों का भी पठन करना चाहिए। वैसे महाभारत देखा जाए तो नैतिकता की दृष्टि से थोड़ा बहुत अजीब लगता है, बहुत सी ऐसी कथाएं इसमें आती हैं जो नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं लगती और ना ही कभी कभी विश्वसनीय लगती हैं। इन पर विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा होता था, लेकिन ये जानना चाहिए कि ये कथाएं ये दिव्य कथाएं हैं, क्योंकि जो भी चीज भगवान से या भगवान के भक्तों से संबंधित होती है वो दिव्य होती है। श्रील प्रभुपाद एक बहुत सरल उदाहरण देते थे कि जिस प्रकार ये माइक्रोफोन है, तो जब ये भगवान की सेवा में लगता है, इस पर से भगवान की कथा का प्रसार होता है, तो ये दिव्य हो जाता है। वैसे दिखने में ये भौतिक है, कोई धातु का बना हुआ है, और अगर इसका उपयोग भौतिक कार्यों के लिए किया जाता है तो ये भौतिक ही है। अर्थात किसी भी वस्तु का उपयोग उसको दिव्य या भौतिक बनाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर का उपयोग हमारे शरीर को दिव्य या भौतिक बनाता है। अगर हम अपने इस शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अर्थात अपने कानों को, अपने आंखों को, अपनी जिह्वा को, अगर हम भौतिक वस्तुओं में लगाते हैं, भौतिक कार्यों में लगाते हैं, तो इस शरीर भौतिक है। और अगर इसी भौतिक शरीर को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, इन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, तो यही शरीर दिव्य हो जाता है, फिर ये भौतिक नहीं रहता। तो इसीलिए हम सबको ये जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इस शरीर को भौतिक स्तर से उठाकर, देहात्म बुद्धि से उठाकर इसे दिव्य स्तर पर स्थित करना, शरीर को स्थित करना अर्थात अपनी चेतना को सिद्ध करना, क्योंकि शरीर ये तो कहीं से निचले स्तर से उठाकर ऊपर रखा नहीं जा सकता। शरीर तो भौतिक तत्वों से बना है, लेकिन यही भौतिक तत्व दिव्य हो जाते हैं जब उनको भगवान की सेवा में लगाया जाता है। माता जी से विनती है, थोड़ा आगे आ जाएं, पीछे जगह नहीं हो रही है, बैठने के लिए कष्ट हो रहा है। थोड़ा अगर जमखाने पे नहीं भी बैठे तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आगे बैठ सकते हैं, अगली बार जमखाने बढ़ा देंगे आप लोगों के लिए। और हार बनाने वाले माताजियों से भी विनती, थोड़ा सा जगह कम करें, सबसे ज्यादा जगह आप लोगों ने ली हुई है, थोड़ा सा जितना आवश्यकता हो उतना कीजिए ताकि पीछे भक्तों को थोड़ी तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग ये कथा इस तरफ इसलिए कर रहे हैं, आप लोगों में से आश्चर्य हो रहा होगा कि वहां मंदिर में इतना अच्छी व्यवस्था है, सारी जगह है, वहां छोड़कर यहाँ एकदम छोटी सी जगह में जरा सही लो तो दूसरे को लग जाता है, वहां पर बड़े आराम से बैठ सकते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि यहाँ पर ध्यान अच्छा लगता है। वहां पर काफी लोग आते हैं जो केवल दर्शन के लिए आते हैं, फिर उन लोगों को ठीक से दर्शन भी नहीं होते हैं और बाकी लोगों को कथा में उन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हम लोग इस तरफ कर रहे हैं। लेकिन अगली बार आपके लिए यहाँ पर काफी जगह होगी, आप चिंता मत कीजिएगा, केवल आज की थोड़ी सी तकलीफ है। तो इस तरह हमारे मनुष्य जीवन को हमें भौतिकता से ऊपर उठाना चाहिए। और महाभारत ये ऐसी ही कथाओं को हमें सिखलाती है कि किस प्रकार अगर व्यक्ति अपने लोभ में, अपने अहंकार में और भौतिकता में फंसा रहेगा तो किस तरह से जीवन भर कष्ट पाएगा। चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, सारा राज्य उसके पास क्यों ना हो, जैसे धृतराष्ट्र, क्या नहीं था उसके पास, लेकिन अगर उसके जीवन को देखें तो पूरे जीवन में केवल अंतिम समय में वो संतुष्ट हुआ। कब संतुष्ट हुआ? जब उसने अपने राज्य को त्याग दिया, जब विदुर ने उसको बहुत डांटा, प्रायः कहना चाहिए कि बड़ा ही कठोर शब्दों में उससे वार्ता की, और उसके बाद जाकर धृतराष्ट्र का हृदय संतुष्ट हुआ। अन्यथा जीवन भर उसके पास राज्य था, संपत्ति थी, सैनिक थे, धन था, सब कुछ था, वो राजा थे, लेकिन संतुष्टि नहीं थी हृदय में, क्योंकि उन्होंने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझा था। और अगर हम सब भी यहाँ इस मंदिर में आते रहें, कथाएं सुनते रहें, इसलिए कि कथाएं अच्छी लगती हैं, मंदिर में आते हैं, आना अच्छा लगता है, ये तो ठीक है, लेकिन जब तक जीवन में गंभीरता नहीं लाएंगे भक्ति के प्रति, तब तक फिर ऐसे ही कई वर्षों तक चलता रहेगा। धृतराष्ट्र के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि जब तक हम छोड़ेंगे नहीं अपनी उन चीजों को, अपनी उन वस्तुओं को जो हमारे लिए भक्ति में बाधक हैं, तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। इसीलिए इन कथाओं को केवल श्रवण नहीं करना चाहिए, इनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों ने देखा अब तक कि कैसे महाभारत की रचना हुई, फिर उसके बाद सत्यवती, उनका विवाह, फिर उनके पुत्र, और फिर उनके पुत्रों की मृत्यु, और फिर व्यासदेव के द्वारा उनकी पत्नियों को संतान प्रदान की गई। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। यहां तक की कथा हम लोग सुन चुके हैं, ठीक है ना? इसके आगे सुना था, पांडु महाराज इनको राजा बनना था। दरअसल जब तीनों पुत्र हुए, छोटे थे, तो उस समय राज्य भीष्म ही करते थे, क्योंकि तीनों बालक थे और भीष्म इंतजार कर रहे थे कि ये लोग बड़े हों और ये अपना राज्य संभालें। ऐसा वर्णन है कि भीष्म के राज्य में ऐसा प्रतीत होता था लोगों को मानो राम राज्य आ गया हो। ये राम राज्य, ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध है। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान श्री राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था, सब सुखी थे। हाँ, ये केवल भगवान ही कर सकते हैं कि सभी जीवों को सुखी रख सकते हैं। तो भगवान श्री राम के राज्य में सब सुखी थे और उसका एक कारण था क्योंकि उनके केंद्र बिंदु स्वयं भगवान थे, इसीलिए सब लोग सुखी थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहां पर सब लोग बहुत ज्यादा सुखी होते हैं तो कहते हैं कि यहाँ राम राज्य आ गया है। तो भीष्म भी जब राज्य किया करते तो लोग ऐसा मानते थे कि शायद अब राम राज्य लौट आया है। और फिर धीरे धीरे ये बालक बड़े हुए। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे और पांडु ये बड़े बुद्धिमान थे और विदुर ये नीतियों में बड़े ही निपुण थे। बहुत बुद्धिमानी से इन्होंने नीतियों को आत्मसात किया था, इसीलिए विदुर नीति बड़ी प्रसिद्ध है। जैसे चाणक्य पंडित ने नीति दी है, चाणक्य नीति कहते हैं, ऐसे ही विदुर नीति भी बड़ी प्रसिद्ध है। तो फिर तीनों बड़े हुए। धृतराष्ट्र राजा नहीं बन सकते थे क्योंकि अंधे थे, विदुर राजा नहीं बन सकते थे क्योंकि क्षुद्र थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। अब ऐसा नहीं मानना चाहिए कि उस समय लोग बहुत भेद करते थे, जातिवाद बहुत था, ऐसा नहीं है। उस समय पूर्ण रूप से वर्णाश्रम पद्धति का पालन होता था। वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार जो व्यक्ति जिस स्थान पर थे, जैसे क्षुद्र इत्यादि, तो वे लोग अपने स्थान पर रहकर ही समाज के एक पूरे ढांचे को चलाते थे। और ये क्यों सही था, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे एक मशीन होती है, मशीन तब कार्य करती है ठीक रूप से जब उसके सारे भाग सही जगह पर लगे हों, उसमें जो भी नट बोल्ट इत्यादि लगते हैं, जो भी उसके अन्य पार्ट्स लगते हैं, अगर वो सही जगह पर लगे हों और सही तरीके से कार्य कर रहे हों तो वो मशीन ठीक रूप से कार्य करेगी। अगर समझिए उसका एक भाग खराब हो जाए तो फिर वो मशीन कार्य नहीं कर पाती, सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये वर्णाश्रम पद्धति है। उस समय सब लोग अपने अपने स्थानों पर रहते हुए अपने अपने कार्य करते थे, इसलिए सारा समाज सुचारू रूप से चलता था। तो इसलिए कोई भेदभाव नहीं था, कोई जातिवाद नहीं था। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और शूद्रों को देखते ही उन्हें फिर से नहाना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो आगे चलकर कुछ एक ब्राह्मणों ने, जिन्हें शास्त्र का ठीक से ज्ञान नहीं था, इस प्रथा को फैलाया। उस समय सभी लोग अपने अपने स्थान पर रहते हुए कार्य करते थे और समाज बड़े सुचारू रूप से चलता था। तो फिर क्षुद्र होने के कारण वे राजा नहीं बने, हालांकि उनके अंदर गुण थे। और फिर पांडु को राजा बनाया गया, जो बड़े बुद्धिमान थे, राजा के पुत्र थे उनके वंशज। और राजा पांडु ने बड़ी अच्छी तरह से राज्य किया। और फिर भीष्म ने सोचा कि अब इन तीनों का विवाह करना चाहिए, तीनों का विवाह करा देना चाहिए। तो उन्होंने विदुर को बुलाया। विदुर इतने बुद्धिमान थे, जैसे हमने पिछली बार वर्णन किया था, स्वयं धर्मराज विदुर के रूप में यमराज आए हैं, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था मांडव्य मुनि के द्वारा। तो बड़े चतुर, बड़े बुद्धिमान। तो भीष्म भी उनसे पूछा करते थे, हालांकि उनके पुत्र के समान थे विदुर, लेकिन फिर भी भीष्म ने उन्हें बुलाया और पूछा कि अब तीनों का विवाह करना चाहिए, तो मेरे मन में तीन कन्याओं के नाम हैं, आपका क्या विचार है? दरअसल भीष्म एक और प्रथा को स्थापित कर रहे थे कि राजा ही क्यों ना हो, कभी भी स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले, उसको निर्णय लेना चाहिए ब्राह्मणों से सलाह करके, बुद्धिमान व्यक्तियों से सलाह करके, ताकि उसके निर्णय का गलत प्रभाव प्रजा पर नहीं पड़े। राजा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो राजा हो, माता पिता हो, गुरु हो, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इनका एक गलत निर्णय कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए बड़ी सावधानी से राजा को राज्य करना चाहिए। आज समाज में दुर्व्यवस्था इसीलिए है कि राजाओं ने, जो आजकल के तथाकथित राजा हैं, उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह लेना बंद कर दिया है। तो भीष्म इस प्रथा को स्थापित कर रहे थे कि भले ही विदुर उनसे छोटे थे, उनके पुत्र के समान थे, लेकिन फिर भी भीष्म उनसे सलाह करते हैं, उनसे पूछते हैं कि विवाह होना है, क्या करना चाहिए। और विदुर बड़ी नम्रता से भीष्म को जवाब देते हैं कि आप जो उचित समझें वही ठीक है। तो एक तरफ भीष्म एक नियमों को स्थापित कर रहे हैं कि हमें भले ही वो छोटा क्यों ना हो, अगर बुद्धिमान है तो उससे चर्चा करनी चाहिए, और दूसरी तरफ विदुर इस नीति को स्थापित कर रहे हैं कि अगर हमारे वरिष्ठ हैं तो उनका कैसे सम्मान करना चाहिए। और विदुर हालांकि बड़े बुद्धिमान थे, चाहते तो बहुत सी सलाह दे सकते थे, लेकिन विदुर ने कहा जैसा आप उचित समझें वही ठीक है। उन्होंने अपमान नहीं किया भीष्म का, उनको सलाह देकर सम्मान किया। तो इस तरह से फिर भीष्म ने सबसे पहले राजा सुबल की पुत्री गांधारी, जो गांधार नरेश के राजा थे, गांधार नगर के राजा थे, उनकी पुत्री गांधारी के लिए प्रस्ताव रखा धृतराष्ट्र का, क्योंकि नियम था पहले बड़े भाई का विवाह होना चाहिए, तो धृतराष्ट्र का रखा। गांधार नरेश के हृदय में थोड़ा सा संशय हो गया, थोड़ा दुख हो गया कि तीनों में से या दोनों में से, अगर पांडु के लिए उन्होंने मेरी पुत्री का हाथ मांगा होता तो कितना अच्छा होता। धृतराष्ट्र ठीक हैं, बड़े हैं, लेकिन हैं अंधे, और एक अंधे के साथ अपनी पुत्री को जीवन भर के लिए देना ये उनको ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ समय मांगा। और फिर बहुत सोच विचार किया और फिर राजा ने ये निश्चय किया कि भले ही धृतराष्ट्र अंधे हैं लेकिन बहुत बड़े राजकुल के हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, मान प्रतिष्ठा है, राजा हैं, बड़े गुणवान हैं, तो इसलिए ना नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और जब गांधारी ने ये सुना तो फिर गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि गांधारी ने सोचा कि अगर मेरे पति, मेरे भावी पति, अभी तो विवाह नहीं हुआ था, लेकिन मेरे भावी पति अगर वे देख नहीं सकते तो मुझे भी नहीं देखना चाहिए। ये सतीत्व है, ये असली दृष्टि में अपने पति के प्रति एक प्रकार का सम्मान है जो स्त्रियों को प्रकट करना चाहिए। तो वैसे तो सब लोगों ने इसको बड़ी अच्छी तरह से स्वीकार किया, लेकिन इनके भाई शकुनी, इनको ये स्वीकार नहीं हुआ। बताया जाता है कि शकुनी अपने पूर्व जन्म में एक असुर थे, द्वापर नामक असुर, और वही अब शकुनी का रूप लेकर आए थे। तो फिर शकुनी को ये अच्छा नहीं लगा कि मेरी बहन को एक अंधे को दिया जा रहा है, तो मन ही मन उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं इसका बदला अवश्य लूंगा, और वो भीष्म से द्वेष करने लगे, क्योंकि भीष्म ने ये प्रस्ताव रखा था। हमारी इच्छाएं हमारी भक्ति के मार्ग में बाधाएं बनती हैं। हम जब किसी चीज को स्वीकार नहीं करते, जैसे शकुनी ने स्वीकार नहीं किया, तो फिर ये बाधाएं हमारे जीवन में बड़े कष्ट लाती हैं। और फिर हम लोग कई योजनाएं बनाते हैं जिनके द्वारा हम जिनको अपना शत्रु मानते हैं, जिनको अपना वैरी मानते हैं, उनके प्रति गलत कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये केवल लोभ के कारण होता है। व्यक्ति को लोभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोभ के कारण नुकसान ही होता है, कष्ट होता है। व्यक्ति लोभ में ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है। एक कथा बताई जाती है कि एक बार एक व्यक्ति 30 सोने के सिक्के उसको मिले। ये बड़ा ही लालची व्यक्ति था, लेकर जा रहा था कि रास्ते में गिर गए कहीं पर, उसको पता नहीं चला। और फिर जब वो घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि 30 सिक्के नहीं हैं, भागा, सब जगह ढूंढा, नहीं मिले। तो अपने मित्र के घर पर गया, बड़ा ही निकट का मित्र था उसका। और उस मित्र से उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, आज मेरे 30 सोने के सिक्के खो गए हैं। या उसने कहा मेरे सोने के सिक्के खो गए हैं। तो उस मित्र की एक पुत्री थी जो उस समय वहां से सड़क से आ रही थी, रास्ते से, और उसको वो सिक्के मिले थे। तो जब वो घर पर वापस आई, उसने अपने पिता से कहा कि मुझे ये 30 सोने के सिक्के मिले हैं। तो पिता ने कहा हाँ, मेरा मित्र आया था और उसने बताया था कि उसके सोने के सिक्के कुछ खो गए हैं, तो उसी के होंगे ये, मैं तुरंत उसको बुलाता हूँ और उसको दे देता हूँ। तो उसने अपने मित्र को बुलाया और कहा कि मेरी पुत्री को तुम्हारे सोने के सिक्के मिले हैं, ये लो ले जाओ। तो मित्र ने तुरंत लिए। अब बड़ा लालची था, जानता था कि इसके पास और भी धन है। तो उसने क्या किया, गिनने लगा और गिनने के बाद कहा कि इसमें 10 कम है। तो मित्र ने कहा, अपनी पुत्री से पूछा कि तुमने कहीं रखे हैं? तो उसने कहा नहीं, जितने थे वो दे दिए। तो मित्र ने पूछा कितने हैं? उसने कहा इसमें केवल 30 हैं सोने के सिक्के। तो उसने पूछा आपके कितने खोए थे? उसने कहा मेरे 40 खोए थे। तो अब मित्र सोचने लगा कि अरे ये तो, अब फिर से उसने अपनी पुत्री से पूछा तो पुत्री ने कहा नहीं, और उसको पूरा विश्वास था पुत्री पर। तो वो जान गया कि ये मित्र, ये इसके मन में लालच आ गया है। तो फिर उसने भी कहा कि नहीं, 30 ही सिक्के हैं। तो फिर दोनों में थोड़ा सा वाद विवाद हुआ और बात फिर वहां के जो जज थे, जो पंच थे, उन तक पहुंची। तो वहां पर जब बात पहुंची तो यहां ये आदमी कह रहा था कि मेरे 40 सिक्के थे और ये कह रहे थे कि 30 मिले थे। ये व्यक्ति जान गए कि ये जो लोभी व्यक्ति है झूठ बोल रहा है। तो उसने उससे पूछा कि अच्छा तुम्हें बताओ, ठीक ठीक बताओ, तुम्हारे कितने सिक्के खोए थे? उसने कहा मेरे 40 सिक्के खोए थे। ने कहा ठीक है। उसने लड़की से पूछा ठीक ठीक बताओ तुम्हें कितने सिक्के मिले? ने कहा मुझे 30 सिक्के मिले। तो उसने कहा ये 30 सिक्के तुम रख लो, क्योंकि जो इनके 40 सिक्के खोए हैं वो ये वाले सिक्के नहीं है, क्योंकि इनके 40 खोए हैं, आपको केवल 30 मिले हैं। तो उसने कहा कि ये आप रख लो, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया ये कहकर कि मेरे 30 सिक्के खोए हैं तो मैं आपको उसके पास भेज दूंगा या उसको आपके पास भेज दूंगा, आप उसको वो 30 सिक्के दे देना। और फिर इसकी ओर मुड़कर कहा कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास 40 सिक्के लेकर आया तो मैं आपको बुलाऊंगा और आपके 40 सिक्के दे दूंगा। तो बेचारा हाय हाय करने लगा और फिर कहने लगा कि नहीं नहीं बड़ी गलती हो गई, ये सिक्के मेरे ही हैं। तो पंच ने कहा नहीं, अब ये सिक्के गए। तो देखिए, जब व्यक्ति लोभ करता है, अगर वो चुपचाप अपने सिक्के ले जाता तो कम से कम 30 सिक्के तो मिलते, 10 सिक्के के लोभ में उसके 30 सिक्के भी चले गए। तो इसलिए ऐसा लोभ हमें नहीं करना चाहिए। इस लोभ के कारण जीवन में बड़ा कष्ट होता है। तो कुछ पाने की आकांक्षा या पाने की इच्छा हमें बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने पर प्रेरित करती है। धृतराष्ट्र की ही कथा में हम लोग आगे देखते हैं कि जब पांडव आ गए थे, ये चर्चा हम लोग आगे करेंगे, जब पांडव आए थे, तो जब पांडव आ गए और जो भी कार्य पांडव करते उसमें उन्हें बड़ी प्रसिद्धि मिलती, और जो भी कार्य कौरव करते या दुर्योधन इत्यादि करते तो उनको कोई प्रसिद्धि नहीं मिलती थी। तो धृतराष्ट्र बड़े परेशान हो गए, क्योंकि पुत्रों से तो प्रेम था ही। तो फिर धृतराष्ट्र ने एक दिन अपने एक मंत्री को बुलाया जिसका नाम था कनिक, और उस मंत्री से पूछा कि अब ठीक ठीक बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो ये जो पांडु के पुत्र हैं, ये जैसा भी इनको मैं प्रयास करूं, जो भी करूं, लेकिन इनका नाम अच्छा ही हो जाता है। सारे लोग, सारी जनता इनको प्रेम करती है, और मेरा इतना सुंदर पुत्र दुर्योधन, इतना गुणवान, इसको कोई नहीं कुछ कहता है, इसको प्रजा प्रेम नहीं करती है, इसका नाम भी नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं द्वेष करूं पांडु पुत्रों से, या उनके प्रति कोई अपराध करूं, या क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उनका जो मंत्री था उसने बहुत सारी चीजें बतलाई, राजा को क्या करना चाहिए, कैसे राज्य करना चाहिए इत्यादि। लेकिन उसने एक बात उनको बतलाई, एक कथा सुनाई, एक जंगल की कथा, जिसके द्वारा उसने बतलाया कि अगर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए, और व्यक्ति को चतुर होना चाहिए। तो उन्होंने एक कहानी बताई, उन्होंने बताया कि एक जंगल में एक लोमड़ी थी, एक भेड़िया था, एक शेर था और एक चूहा था। ये चारों बड़े आराम से प्रेम से रहते थे, ऑफकोर्स ये कल्पना ही हो सकती है, चारों आराम से रहें। तो उसने कहा कि एक हिरण था जिसका शिकार ये लोग करना चाहते थे, लेकिन हिरण बड़ा फुर्तीला था, पकड़ में नहीं आता था। ये कथा महाभारत में आती है। तो बड़ा फुर्तीला था, पकड़ में नहीं आता था। तो एक दिन लोमड़ी ने, जो कि बड़ी चालाक होती है, लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, आप लोग लोमड़ी जानते हैं ना, सब लोग मराठी में क्या बोलते हैं लोमड़ी को? हाँ, कोला। और भेड़िए को क्या बोलते हैं? ठीक है, वो आप लोग बोल दीजिए, कोला। ठीक है, तो लोमड़ी बड़ी चतुर होती है, बड़ी चालाक होती है। तो लोमड़ी ने सोचा कि अब इसको ये हिरण को पकड़ना चाहिए, खाने के लिए कुछ मिले। थोड़ा सा पर्दा ठीक कर दीजिए, भगवान के दर्शन खुले हुए हैं, उनकी ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि, उसने चूहे से कहा कि आप एक काम करो, ये क्या होता है कि जब ये शेर शिकार करने जाता है तो बड़ा फुर्तीला है, भागता है बड़ी तेज, तो आप एक काम करना, चूहे से कहा कि धीरे से जाना रात्रि के समय या जब भी वो सो रहा हो हिरण, और जाके उसके पांव में काट लेना, पांव में जोर से काट देना, उसको खा लेना वहां से पांव का भाग, सोते हुए उसको पता नहीं चलेगा, और कल जब वो भागने लगेगा तो तेज भाग नहीं पाएगा और फिर शेर इसका शिकार कर लेंगे। तो चूहे ने स्वीकार किया। फिर चूहे ने ऐसा ही किया, जब हिरण सो रहा था उसके पांव को जाकर खा लिया या काट लिया वहां पर। तो अगले दिन जब हिरण भागने लगा शेर को देखकर, तो भाग नहीं पाया ठीक से, क्योंकि पांव में लगा हुआ था चोट। तो फिर हिरण को मार दिया शेर ने। अब मरे हुए हिरण को लाए, अब खाना था उसको। तो सबसे लोमड़ी ने कहा कि आप एक काम करो, आप लोग सब नहा कर आ जाओ, मैं तब तक इसकी रक्षा करती हूँ, कोई दूसरा प्राणी इसको ले नहीं जाए, तो मैं यहाँ पर रहती हूँ, आप लोग जल्दी से स्नान नान करके आ जाओ, फिर आराम से बड़ा फीस्ट करेंगे। उनके लिए बहुत बड़ा फीस्ट हो गया, कई दिनों के बाद मिला था। तो सब लोग स्नान करने के लिए गए। अब लोमड़ी विचार करने लगी, बड़े गहरे विचार में। तो सबसे पहले शेर नहाकर वापस आया, और शेर ने देखा कि लोमड़ी बड़े गहरे विचार में है। तो शेर ने पूछा, भाई क्या बात है, आज तो फीस्ट है, इतने खुशी का बात है, इतने दिनों बाद इस हिरण को मारा है, अब चलो खाएंगे, तुम क्यों इतने चिंता कर रही हो, सब मिल बांट कर खाएंगे। तो उसने कहा कि दरअसल मेरी चिंता का विषय यह है कि अभी अभी चूहा यहां पर था, मैं उससे बात कर रही थी, तो चूहा कह रहा था कि दरअसल इसको मारा तो मैंने है, शेर ने नहीं मारा है, शेर तो इतने दिन से प्रयास कर रहा था, मार सका था क्या, लेकिन दरअसल मारा तो मैंने है, अगर मैंने जाकर वो पांव नहीं काटा होता उसका तो मरता नहीं, तो ये शेर का शिकार नहीं है। तो शेर ने सुना तो उसने भी सोचा, हाँ बात तो सही है, मैं अपने कर्तव्य को भूल गया था, शेर कभी भी दूसरे का शिकार नहीं खाता, शेर अपना ही शिकार करके खाता है, मैं इस बात को भूल गया था, اچھا ہوا مجھے یاد دلایا، اب میں جاتا ہوں، اب سے اکیلے رہ کر میں خود شکار کر کے کھاؤں گا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد رہ گئے بھیڑیا اور چوہا۔ تو اس کے بعد چوہا آیا، چوہے نے دیکھا لومڑی بیٹھی ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے بڑی چنتا ہے تمہارے جیون کی۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا شیر کہہ رہا تھا، ابھی آیا تھا، کہ ہرن کو کھانے کے بعد تھوڑا بہت اگر بھوک لگی تو چوہا ہے نا، اس کو کھا جائیں گے۔ تو چوہا ایک دم گھبرا گیا اور بولا نہیں نہیں آج کے بعد کبھی ادھر نہیں آؤں گا، اور بھاگ گیا بل میں ڈر کے مارے۔ اور اس کے بعد پھر بھیڑیا آیا۔ اب بھیڑیے سے بھی لومڑی کو کچھ کہنا تھا تاکہ بھیڑیا بھی بھاگ جائے، تو بھیڑیے کو بھی ایسا ہی کہا کہ دیکھو شیر کے من میں ٹھیک نہیں ہے بات، اور وہ مارنے والا ہے تمہیں، تو وہ بھی بھاگ گیا۔ تو اس پرکار سے وہ کتھا سناتے ہیں کہ سب کو بھگا کر پھر لومڑی آرام سے بیٹھ کر فیسٹ کھانے لگی۔ تو یہ کتھا سنانے کے بعد دھرتراشٹر کو سمجھانے لگے کہ اگر ہمارے آنند کے لیے، ہماری سویدھاؤں کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے تو صحیح ہے۔ تو دیکھیے جب دھرتراشٹر کو ایسی صلاحیں ملیں گی، ایسے سجھاؤ ملیں گے، تو پھر وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ پانڈووں کو پرتی اپرادھ تو کرے گا ہی پھر وہ۔ تو اسی لیے یہ لوبھ ہمارے آنند میں بادھا پڑتا ہے۔ ویکتی لوبھی کیوں بنتا ہے؟ آنند لینے کے لیے، لیکن یہ لوبھ ہی ہمارے آنند میں بادھا بنتا ہے۔ دھرتراشٹر بڑا لوبھی تھا، چاہتا تھا راجیہ، لیکن جیون بھر وہ راجیہ رہتے ہوئے بھی اس کے پاس ہی تھا نا راجیہ۔ جب پانڈو مہاراج تھے تب بھی اس کے پاس تھا، جب پانڈو مہاراج نہیں رہے تب بھی اس کے پاس تھا۔ تو دیکھیے کتنی بڑی وچتر بات ہے کہ جس راجیہ کو پانے کے لیے جیون بھر لالسا کی، لیکن راجیہ تو اسی کے پاس تھا، اسی کو جان نہیں پایا، یہ لوبھ ہے۔ اور نہ اس کا بھوگ کر پایا، نہ آنند لے پایا، اور جیون بھر اس کشٹوں میں رہا، چنتا میں رہا۔ ہم لوگ اس جگت میں کبھی سکھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ کھوج کرتے ہیں سکھ کی، لیکن آپ دیکھیے کون سا ویکتی سکھی ہے۔ بڑے بڑے راجہ مہاراجہ ہوئے، ہم لوگ دیکھتے ہیں بھارت میں بھی یا اس سے الگ جگہوں پر بھی بڑے بڑے یدھ ہوئے، نیپولین، ہٹلر، بڑے بڑے لوگ۔ یا پھر ابھی کے سمے میں دیکھیں تو ایک بڑی پرسدھ مہیلا تھیں، لیڈی ڈائنا، جو پرنس چارلز کی پتنی تھیں۔ ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ سارے جگت کا ایشوریہ، سوندریہ اور یش، کیا نہیں تھا؟ وہ اگر باہر نکل جاتے تھے تو کیمرے والے فٹافٹ فوٹوز کھینچنا، کہیں بیچاری اکیلے جا بھی نہیں پاتی تھیں، جہاں بھی جائیں کیمرے لگے ہوتے تھے فوٹوز کھینچنا، اتنی پرسدھ تھیں وہ، سندر تھیں بہت۔ اور پھر شادی بھی ان کی اتنے بڑے گھر میں ہوئی، راجکمار سے، سارے برٹن کے راجا ان کا وواہ ہوا۔ کیا نہیں تھا ان کے پاس، لیکن کیا وہ سکھی تھیں؟ سکھی نہیں تھیں۔ تو کسی کو بھی لے لیجئے، کوئی بھی ویکتی سکھی نہیں ہے، کیونکہ بھگوان کو بھولے ہوئے ہیں، لوبھ کو ہردے میں ستھان دیا ہوا ہے۔ اور جب تک یہ لوبھ، یہ دویش ہمارے ہردے سے جائے گا نہیں، تب تک ہم لوگ کشٹوں میں ہی رہیں گے۔ اور کشٹ بڑھتے جاتے ہیں، ویکتی یواوستھا میں ہوتا ہے، بوڑھا ہونا نہیں چاہتا لیکن بوڑھا ہونا پڑتا ہے۔ بھاگوت میں ورنن ہے کہ یہ جو بڑھاپا ہے، یہ ایک ایسی استری کے سمان ہے جو جبردستی آپ سے وواہ کر لیتی ہے۔ کوئی کرنا نہیں چاہتا اس سے وواہ، چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی؟ کوئی نہیں چاہتا بوڑھا ہونا، لیکن جبردستی وواہ کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ بوڑھا ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس جگت میں ہم لوگ سکھی ہونے کے الگ الگ مارگ جو ڈھونڈتے ہیں، وہ مارگ ہمیں کیول کشٹ پردان کرتے ہیں۔ اتنے سارے ادھارنوں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جن ویکتی کے پاس ساری بھوگ کی سویدھائیں تھیں، وہ ویکتی بھی کبھی सुखी नहीं हो पाए।
और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम अपनी सुविधाओं को, अपनी संपत्ति को, अपने अहंकार को त्यागते नहीं हैं।
जब तक हम चीजों को त्यागने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हम सुखी नहीं होंगे। एक बड़ी सुंदर कथा है, हम बच्चों को ये कथाएं सुनाते हैं, हम लोग भी सब बच्चे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। एक व्यक्ति था जिसने एक तोता पाला हुआ था, एक पक्षी उसने पिंजरे में रखा हुआ था। पक्षी बहुत बोलता था, बड़ा अच्छा मधुर बोलता था, तो बड़ा अच्छा लगता था और इसका बड़ा ध्यान रखता था कि कहीं ये चला नहीं जाए। बड़ा प्रेम था इस व्यक्ति को उस पक्षी से। लेकिन ये पक्षी को जहां से पकड़कर लाया था वहां पर अन्य पक्षी भी थे, तो एक समय ये व्यक्ति उस स्थान पर फिर से जा रहा था। तो इसने अपने पक्षी से पूछा कि भाई मैं वहां पर जा रहा हूं, तुम्हारे मित्रों के लिए कोई संदेश हो तो बताओ, मैं दे देता हूं। तो फिर इसने कहा कि बस मेरे मित्रों से यही कहना कि मैं कामना कर रहा हूं कि कब उनके साथ आकर मैं उनके साथ उड़ सकूं, उनके साथ रह सकूं। मैं बड़ा दुखी हूं और उनसे मिलना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं बंद हूं पिंजरे में, आप ये संदेश दे देना। तो व्यक्ति ने कहा ठीक है। वो गया वहां पर, उसी स्थान पर देखा और भी उसके जैसे पक्षी थे, तो उन्होंने वो संदेश दिया, कहा कि तुम्हारे मित्र जो मेरे पास पिंजरे में है उसने ऐसा संदेश दिया है कि वो आपके पास आना चाहता है, बहुत दुखी है, लेकिन कोई उपाय नहीं है किस तरह से आए, पिंजरे में बंद है। तो जब उसने ऐसा कहा तो देखा अचानक एक पक्षी जो बैठा था अचानक गिर गया नीचे और मर गया। तो बड़ा दुख हुआ उसको, कह रहे मैंने क्या कह दिया, ये सुनते ही ये मर गया पक्षी। तो वो वापस आया अपना काम वाम करके। तो फिर इस पक्षी ने पूछा कि आपने मेरा संदेश दिया था मेरे मित्रों को? उसने कहा हाँ दिया था। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही मैंने ये संदेश दिया, एक पक्षी शायद आपका बहुत अच्छा मित्र होगा, वो अचानक ऊपर से नीचे गिर गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, मर गया वो, मैंने देखा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो ये सुनकर ये जो पक्षी था ये भी एकदम गिर गया, मर गया, ये भी ऐसा प्रतीत हुआ कि मर गया ये। तो उसको भी बड़ा दुख हुआ, व्यक्ति को, अरे मैंने क्या, मुझे बोलना नहीं चाहिए था इसको ऐसा। तो फिर उसने पिंजरा खोला, उस पक्षी को बाहर निकाला, देखने लगा कि भाई क्या हुआ। जैसे ही उसने हाथ में लिया पक्षी उड़ गया ऊपर। तो अचानक समझ नहीं आया उसको ये क्या हो रहा है, तो समझ ये क्या है। तो पक्षी ने बताया आपने मुझे बहुत दिन रखा, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मेरा मैसेज लेकर गए ये भी धन्यवाद, और वहां से उनका संदेश लाए उसके लिए और धन्यवाद। तो उसने कहा संदेश, मैं तो कुछ नहीं लाया। उसने कहा वही संदेश था, वो पक्षी मरा नहीं था, उसने मुझे संदेश भेजा था कि ऐसे करो तो मर जाओगे, तो बाहर निकल आओगे, उड़ के आ जाना हमारे पास, तो मैंने वही किया, अब मैं जा रहा हूं। तो इस कहानी से, इस कथा से हम ये सीखते हैं कि जब तक हम अपने दुखों में जी रहे इस जीवन को त्यागने के लिए तैयार नहीं, अर्थात व्यक्ति को अगर असली सुख पाना है तो उसको मृत्यु के लिए भी तैयार होना चाहिए। ऐसे बताते हैं कि जब तक हम मरेंगे नहीं हम जी नहीं सकते, अर्थात मरना अर्थात अपनी इच्छाओं को मारना। जब तक ये इच्छाएं हैं और ये इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं, अभी हम बुढ़ापे की बात कर रहे थे, बुढ़ापे में बाकी सारी चीजें बूढ़ी हो रही हैं, एक चीज जवान हो जाती है, इच्छाएं, है ना, ये जवान होती रहती है, ये कभी बूढ़ी नहीं होती है। आपकी इच्छाएं कभी बूढ़ी हुई है आज तक? हर रोज नव नवायमान। तो बुढ़ापे में इच्छाएं जवान हो जाती हैं, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है लेकिन इच्छाएं नहीं होती हैं। तो इसीलिए इन इच्छाओं को, इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें जीना है तो हमें मरना चाहिए, तब हम असली दृष्टि से असली आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, सही में जी सकते हैं। अन्यथा शकुनी की तरह जीवन भर, देखिए ये दोनों व्यक्ति धृतराष्ट्र और शकुनी, ना खुद संतुष्ट रहे ना अपने पुत्रों को संतुष्ट रहने दिया।
तो इस तरह से विवाह हुआ गांधारी का, स्वीकार किया, फिर गांधारी को लेकर आए हस्तिनापुर और वहां पर उनका विवाह हुआ। फिर उसके बाद शूरसेन की एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रथा। शूरसेन ने अपनी इस पुत्री को कुंती भोज, राजा कुंती भोज को गोद दिया था, इसलिए उनका और भी नाम पड़ा कुंती। फिर पांडु महाराज के लिए कुंती महारानी के विषय में सोचा गया। कुंती महारानी बहुत सुंदर थी, लेकिन ऐसा हुआ कि किसी भी राजा ने अभी तक उनका उनसे विवाह नहीं किया था। तो फिर उनके पिता ने, राजा कुंती भोज ने, स्वयंवर रचा और स्वयंवर में सभी राजाओं को आमंत्रित किया। और उस समय कुंती महारानी ने, कुंती देवी ने महाराज पांडु को अपने पति के रूप में चुना। तो फिर उनका भी विवाह हुआ। और कुछ समय बाद भीष्म ने पांडु से कहा कि एक और विवाह उसे करना चाहिए। तो फिर पांडु ने और एक विवाह माद्री से किया, जो शाल नरेश की बहन है, शाल। तो फिर इस तरह दोनों विवाह हुए, लेकिन विवाह को अभी 30 ही दिन हुए थे दूसरे विवाह को पांडु के, कि पांडु ने सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने सारा राज्य अपने भाई को सौंपा और सारी सेना लेकर चल दिए वो, और इस सारे राजाओं को परास्त करने लगे। उनका जो शौर्य था, उनका जो बल था, उसकी चर्चा महाभारत में की गई है कि जहां भी जाते बड़े बड़े राजाओं को वो हराते, पांडु महाराज। और सारे लोग गुणगान करने लगे कि अपने ही वंशज शांतनु महाराज नहीं तो भरत महाराज की तरह हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। और इस तरह से पांडु महाराज सारी पृथ्वी पर अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाने लगे। फिर काफी समय के बाद वापस आए बहुत सारा धन, राज्य संपत्ति लेकर, और ये सारी संपत्ति, सारा धन उन्होंने भीष्म को अर्पित किया। और उसके बाद अपनी दोनों पत्नियों के साथ वो वन में चले गए, क्योंकि बहुत समय बाहर रहे थे, युद्ध किया काफी, कई महीनों, कई वर्षों तक शायद। तो फिर वापस आकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वन में रहते थे। और यहां से धृतराष्ट्र जो भी उनको वन में चाहिए वो यहां से भेजते रहते थे। एक दृष्टि से वो अपने भाई के प्रति प्रेम दिखला रहे थे, लेकिन असल बात ये थी कि वो चाहते थे कि पांडु वहीं रहे, आए नहीं वापस। इसलिए जो चाहिए भिजवा देते थे, पांडु तुम सुखी रहो वन में, तुम्हें वन का राज्य मिले और मैं यहां पर आपका राज्य आराम से संभालूं। तो फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि एक हिरण और हिरणी जो आपस में प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे, ऐसे समय में शिकार करते हुए पांडु महाराज ने उनको तीर मार दिए। और जैसे ही तीर लगे तो मनुष्य की वाणी में वो चिल्लाने लगा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, पांडु महाराज पास में गए कि क्या हुआ। तो वो हिरण उनसे बात करने लगा, कहने लगा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। पांडु महाराज कहने लगे, कौन सा अपराध है? अरे प्राणी को मारना, ये तो क्षत्रियों का धर्म है, क्षत्रिय तो आखेट करते हैं, खेलते हैं, कौन सा मैंने पाप कर दिया? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हिरण को मारने का पाप नहीं कह रहा हूं मैं हिरण नहीं हूं, मैं एक ऋषि हूं, ऋषि किंडम। और दरअसल मैं अपनी पत्नी के साथ इस रूप में प्रेम का आदान प्रदान कर रहा था, क्योंकि मनुष्य रूप में प्रेम का आदान प्रदान करना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने हिरण का रूप ले लिया। तो इसलिए तुमने मेरी हत्या की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और तुमने ऐसे समय में, जब मैं अपनी पत्नी के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहा था, ऐसे समय में तुमने मुझे तीर मारा है, इसलिए श्राप देता हूं कि जब तुम अपनी पत्नी से प्रेम का आदान प्रदान या उसके बहुत निकट होगे, तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो पांडु महाराज को बड़ा ऐसा श्राप, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, उन्होंने तो हिरण को मारा था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि ये ऋषि थे। पहले के समाज में चाहे वो राजा हो या किसी भी सर के हों, ऋषि मुनियों का, भक्तों का
सम्मान करना सिखलाया जाता था। जब परीक्षित महाराज को भी शाप मिला था ब्राह्मण पुत्र के द्वारा, तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था, जबकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा श्राप कि 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाए, परीक्षित महाराज ने स्वीकार किया। ये हमारी सभ्यता थी, ये हमारा प्रशिक्षण था जो पहले से बच्चों को मिलता था, संस्कार थे। आज आप देखिए, अगर किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को ऐसा कुछ कहा जाए तो कैसा विरोध होता है। यहां तो उनकी गलती नहीं थी तो भी विरोध नहीं किया, अगर गलती हो तो भी लोग आजकल विरोध करते हैं, कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है, हमारी सभ्यता खो बैठे हैं हम लोग। कितनी महान सभ्यता थी हमारी, भारतीय सभ्यता के विषय में अगर देखा जाए तो सारे जगत में शीर्ष पर थी, सबसे ऊंची सभ्यता, या कहना चाहिए कि अन्य कोई सभ्यता ही नहीं थी, केवल एक ही सभ्यता थी, भारत की सभ्यता। और कौन सी सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, कई सभ्यताओं के विषय में आजकल चर्चाएं की जाती हैं, लेकिन वो सब सभ्यताएं नहीं है, क्योंकि असली सभ्यता होती है जहां भगवान को केंद्र बनाकर संस्कारों के द्वारा समाज की एक अच्छी व्यवस्था चलती है, उसे सभ्यता कहते हैं। तो इसीलिए ऐसी सभ्यता और ऐसे संस्कार होने के कारण पांडु महाराज ने कोई विरोध नहीं किया, स्वीकार कर लिया, और उसी समय उन्होंने प्रण लिया। उन्होंने कहा कि आज से मैं ब्रह्मचर्य जीवन बिताऊंगा, मैं किसी के संग में नहीं रहूंगा, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे कोई सैनिक नहीं चाहिए, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए, मैं एक ऋषि मुनि की तरह इस जंगल में विचरण करूंगा, भगवान पर ध्यान करूंगा और अपना जीवन यहीं त्याग दूंगा। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनकी दोनों पत्नियां उनसे याचनाएं करने लगी कि आप कृपया हमें साथ में आने दीजिए, हम आपको वचन देती हैं कि आपके इस व्रत के पालन में हम कभी बाधा नहीं बनेंगी, आप अपने व्रत का पालन कीजिए लेकिन कृपया हमें साथ में रखिए, हम कहां जाएंगी। देखिए ये भी कितना सुंदर हम लोग यहां विवरण देखते हैं कि कुंती महारानी और माद्री के लिए पूरा राज्य था, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर ही नहीं, हस्तिनापुर तो केवल राजधानी थी, सारी प्रायः सारी पृथ्वी का राज्य, जो अभी अभी पांडु महाराज स्वयं जीत कर आए थे, तो उनका ही था, पति के बाद पत्नी का। तो फिर अगर वो चाहती तो वे कह सकती थी कि ठीक है, आप तो ब्रह्मचारी हो गए, आपने व्रत ले लिया, संन्यास ले लिया, अब हमारे लिए कुछ नहीं है, हम जाते हैं वापस राज्य में और सब कुछ है ही वहां पर सुविधा। लेकिन नहीं, दोनों ने कहा कि नहीं, रहना तो पति के साथ। ऐसा ही वर्णन हम लोग रामायण में भी सुनते हैं, जब श्री राम को वनवास हुआ, श्री राम गए सीता के पास और उन्होंने सीता से कहा कि तुम नहीं जाना वन में, मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि वन में बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारे हिंसक प्राणी हैं, तुम चल नहीं पाओगी। तो उस समय सीता देवी ने भी यही कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे सिखलाया है, और कौशल्या देवी ने भी उनको सिखलाया था बाद में, तो उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने विशेष करके मुझे सिखलाया है कि एक पत्नी के लिए पति ही उसका जीवन है। तो यहां अयोध्या में अगर मैं इस महल में, इस राजसी ठाट भाट में रहूंगी तो ये मेरे लिए कांटों के समान होगा, लेकिन अगर वहां जंगल में कांटों में आपके संग में रहूंगी तो फिर वो मेरे लिए बहुत आरामदायक अवस्था होगी, इसलिए मैं आपके साथ जाऊंगी। तो फिर इन दोनों ने याचना की, पांडु महाराज ने स्वीकार किया, और फिर पांडु महाराज ने अपना सारा धन जो भी उनके पास उस समय था वो ब्राह्मणों में बांट दिया, अपने सैनिकों को वापस भेज दिया, जो भी सुविधाएं थी सबको भेज दिया और जंगल में एक ऋषि की तरह रहने लगे। दरअसल आचार्य टिप्पणी करते हैं, विशेष करके श्रीपाद मध्वाचार्य, कि ये व्यवस्था थी पांडु के जीवन में एक बदलाव लाने की, जिससे पांडु एक महान ऋषि बने, उन्हें राज ऋषि, या वो तो इतना लिखते हैं कि उन्हें ब्रह्म ऋषि के पद की प्राप्ति हुई अपनी इस तपस्या से, क्योंकि उन्होंने बड़ी कड़ी तपस्या की, वहां पर सब कुछ त्याग दिया, सारे जितने वहां के ऋषि मुनि थे उस जंगल में जहां वो रहते थे, वो बड़े प्रसन्न थे पांडु महाराज से,
उनकी तपस्या देखकर, उनका वैराग्य देखकर। तो इसीलिए ये वैराग्य, ये तपस्या उन्होंने की जिससे वो भगवान को पा सके, भगवान का स्मरण कर सके। वैसे पांडु महाराज ये अपने पूर्व जन्म में एक मारुत हैं। हम लोग जानते हैं कि देवताओं में श्रेणियां होती हैं, आदित्य हैं, रुद्र हैं, मारुत हैं, तो ये मारुत हैं। और इनकी ही पत्नी, इनका नाम है सिद्धि, पूर्व जन्म में वही कुंती देवी के रूप में आई हैं। तो पूर्व जन्म में भी पांडु और कुंती महारानी पति पत्नी ही हैं और वही इस जन्म में भी पति पत्नी बने। तो पांडु महाराज ने बड़ी तपस्या की, बहुत कड़ी तपस्या। और फिर एक समय ऐसा हुआ कि सारे ऋषिगण ब्रह्मलोक जा रहे थे। ब्रह्मलोक में बहुत बड़ी सभा होने वाली थी भगवान के गुणगान की, तो सारे ब्रह्मांड से ऋषि मुनियों को बुलाया गया था। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बड़े बड़े उत्सव करते हैं, रथ यात्रा 100,000 लोग आ जाते हैं, जन्माष्टमी 20,000-25,000 लोग आ जाते हैं। हम लोग सोचते हैं बेलगाम के 2% लोग आ गए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ब्रह्म लोक में जब भगवान का गुणगान होता है तो सारे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि आते हैं। आप सोचिए क्या सभा होती होगी वो, हमें पता नहीं उनका साउंड सिस्टम कितना पावरफुल होता होगा। इतने सारे लोग, लाखों करोड़ों करोड़ों लोग, सारे ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर सब आते ब्रह्मलोक में। और क्या करने, इतनी दूर से पृथ्वी से ब्रह्मलोक क्या करने जा रहे हैं, भगवान का गुणगान। ये नहीं कि ब्रह्मा जी बहुत दान धन करने वाले हैं, कुछ दान मिले, उनको क्या करना, वैसे भी जंगल में रहते हैं। लेकिन भगवान के बारे में श्रवण होगा, भगवान का गुणगान होगा, तो पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग अपने घर से राधा गोकुलानंद मंदिर आने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो फिर सारे ऋषि मुनि जा रहे थे ब्रह्मलोक में, तो पांडु महाराज की भी इच्छा हुई। उन्होंने देखा रे सब जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं भी जाना चाहता हूं। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि देखो, वहां तक जाने का जो स्थान है बड़ा दुर्गम है। पहली चीज, वहां पर केवल ऋषि मुनि ही जा सकते हैं, ऋषियों को ही आमंत्रण है, और वैसे भी वहां तक पहुंचना सबके लिए, साधारण मानव के लिए संभव नहीं है। दूसरा, हम लोग जिस मार्ग से जाएंगे वो बड़ा दुर्गम मार्ग है। अभी तो यहाँ ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे हिमालय और इत्यादि, तो वहां पर चलने के लिए या जो स्थान है वो ठीक नहीं है। तो आपकी तो बात हम नहीं कह सकते, लेकिन आपकी पत्नियां निश्चय ही इस यात्रा को सहन नहीं कर पाएंगी, तो इसलिए आप यहीं रहिए अपनी पत्नियों के साथ। तो पांडु महाराज बड़ा शोक करने लगे और वो कहने लगे कि मेरे ऊंचे लोकों में जाने के मार्ग में बाधा आ रही है, इसका कोई कारण हो सकता है। और फिर उन्होंने सोचा कि हाँ, कारण एक है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके कई ऋण होते हैं उसके ऊपर, तो मैंने देवताओं का ऋण चुका दिया है। वो याद करने लगे कि हाँ, मतलब मैंने कोई ऋण नहीं चुकाया है, इसीलिए अभी तक यहां पर मैं बना हुआ हूं, इसीलिए ऊंचे लोकों में नहीं जा पा रहा हूं। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा देवताओं का ऋण चुका दिया है मैंने। कैसे चुकाया है देवताओं का ऋण? यज्ञ कर, देवताओं का ऋण यज्ञ कर चुकाया जाता है। तो उन्होंने कहा मैंने देवताओं का ऋण चुका दिया, ऋषियों का भी ऋण चुका चुका हूं मैं। ऋषियों का ऋण कैसे चुकाते हैं? अध्ययन करके, शास्त्र पढ़ के, ज्ञान लेके, जो ऋषि मुनि ज्ञान देते हैं उसको स्वीकार करके, शास्त्रों के नियमों का पालन करके। तो उन्होंने कहा मैंने ये भी ऋण चुका दिया है, और फिर साधारण लोगों के प्रति ऋण वो भी मैं चुका चुका हूं। वो ऋण कैसे चुकाया है? मैंने अपना नैतिकता का जीवन जिया, उन लोगों के लिए अच्छे कार्य किए, तो मैंने साधारण जीवों के प्रति भी अपना ऋण चुका दिया है। लेकिन हाँ, अपने पितरों के प्रति मैंने ऋण नहीं चुकाया है, मेरे जो पूर्वज हैं उनके प्रति ऋण नहीं चुका है, क्योंकि मेरी अभी तक संतान नहीं हुई है, मेरा पुत्र नहीं हुआ है जो आगे चलकर पितरों के लिए तर्पण करेगा, तो इसीलिए उनका ऋण अभी बाकी है, और इसी कारण से मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन हाय, मेरी तो स्थिति भी ऐसी है कि मैं तो अब संतान भी उत्पन्न नहीं कर सकता, श्राप मिला है मुझे। तो उन्होंने उन्हीं ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप ही मेरी पत्नियों से पुत्र उत्पन्न कीजिए, आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हमें सब पता है आपकी संतानें होंगी और बड़ी प्रतापी संतानें होंगी, आप चिंता मत कीजिए। तो खैर जब ऐसा आशीर्वाद मिला तो उन्होंने स्वीकार किया। वैसे जब ऋण की बात आती है, भागवत में वर्णन है कि बहुत सारे ऋण हैं हमारे ऊपर, और ये सत्य है, जैसे ही हम जन्म लेते हैं इन ऋणों के, इन कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं। देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणी च राजन् सर्वात्मनये शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तम्। भागवत कहता है कि ऋण है आपके ऊपर, देव देवताओं का ऋण, देव ऋषि ऋषियों का ऋण, पितरों का ऋण, साधारण जीवात्माओं का ऋण, परिवार वालों का ऋण, पितरों का ऋण, कितने सारे ऋण हैं। देव ऋषि भूतात नृणाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणी च राजन्। वो व्यक्ति न उसका दास रहता है न ऋणी रहता है। कौन सा व्यक्ति? सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, जो शरण लेता है। गतो मुकुंदम, भगवान श्री मुकुंद श्री कृष्ण की, जो कि मुक्ति प्रदाता हैं, जो मुक्त करते हैं इन सारे ऋणों से। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है तो उसके लिए कोई ऋण नहीं रह जाता। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं हमारी संस्था में भी कि व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है, उसका कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा करना, छोड़ देता है माता पिता की सेवा, समाज की सेवा छोड़ देता है, तो सेवा छोड़ने का पाप लगता है। हाँ लगता है, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। मैं मुक्त करूंगा तुम्हें उन पापों से। लेकिन भागवत कहता है गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, अगर आप भगवान श्री मुकुंद की शरण के लिए इन ऋणों को चुकाना चाहते हैं तो आप भगवान की शरण लीजिए, सारे ऋण अपने आप चुक जाते हैं। भगवान तो मूल हैं, आधार हैं। अगर हम मूल पर ही ध्यान करेंगे तो बाकी सारा वृक्ष ये आराम से संतुष्ट हो जाता है। तो हमारे सारे ऋण चुक जाते हैं अगर हम भगवान श्री मुकुंद, और ये ऋण ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के ही हैं, हर एक जीवात्मा पर ये ऋण है, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, सबके ऊपर ये ऋण है। और ये ऋण हम चुकाते हैं भगवान की भक्ति करके, क्योंकि अलग अलग ऋण हम नहीं चुका सकते। देवताओं का ऋण, साधारण जीवात्माओं का ऋण, पितरों का ऋण, कितना चुकाते रहेंगे। इसीलिए गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, भागवत कहता है भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की शरण जाइए, आपके सारे ऋण चुक जाएंगे। तो इसीलिए पांडु महाराज उस समय सोचने लगे कि अब मुझे संतान कैसे होगी, बड़े चिंतित रहने लगे। और फिर उन्होंने कुंती से कहा कि तुम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, श्रेष्ठ ब्राह्मण से पुत्र उत्पन्न करो। कुंती ने अस्वीकार किया, कुंती ने कहा मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन फिर जब कुंती ने देखा कि पांडु महाराज की बड़ी तीव्र इच्छा है, तो उन्होंने फिर एक रहस्य को बतलाया। कुंती महारानी ने कहा कि जब मैं छोटी थी तो उस समय एक बड़े महान व्यक्ति कौन आए थे, दुर्वासा मुनि आए थे, उनकी मैंने 13 वर्ष तक सेवा की थी। वहां पर रहे थे घर में, और महाराज कुंती भोज ने कुंती से कहा था कि इनकी सेवा करना। तो 13 वर्ष तक उन्होंने सेवा की, बड़े प्रसन्न हुए दुर्वासा मुनि उस सेवा से। और जब वे जाने लगे तो उन्होंने मंत्र दिया। दुर्वासा मुनि ने इसलिए मंत्र दिया क्योंकि ऐसे ऋषि मुनि, इनको त्रिकालज्ञ कहते हैं। त्रिकालज्ञ अर्थात तीनों कालों के अज्ञ, जानने वाले। तो वो जानते थे कि आगे चलकर कुंती महारानी के लिए ये वरदान साबित बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए कुंती को उन्होंने ये मंत्र दिया कि जिसके द्वारा वो किसी भी देवता का आह्वान करे और फिर देवता उसको आकर पुत्र प्रदान करेंगे। तो जब वो चले गए दुर्वासा मुनि, एक दिन कुंती महारानी ने सोचा कि शक्ति है कि नहीं मंत्र में कि दुर्वासा मुनि ऐसे ही चले गए 13 साल बर्बाद। तो कुंती महारानी ने उस मंत्र का जाप किया और सूर्य देव का स्मरण किया और अचानक सूर्य देव सामने प्रकट हो गए। कुंती घबरा गई। कुंती ने तो ऐसे ही केवल हंसी मजाक में केवल देखने के लिए कह दिया था और अब सूर्य देव कह रहे हैं मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। कुंती ने कहा मेरा भी विवाह भी नहीं हुआ है, मैं कैसे पुत्र ले सकती हूँ, क्या करूंगी उस पुत्र का, सारे समाज में कितना मेरा अपमान हो जाएगा, मेरा सारा वंश इसका अपमान हो जाएगा। लेकिन सूर्य देव ने कहा मैं बाध्य हूं, जो मंत्र का जाप तुमने किया है उस मंत्र के जाप के कारण मुझे आकर तुम्हें पुत्र देना ही होगा। देवता ये बाध्य होते हैं, भगवान बाध्य नहीं है किसी भी चीज के लिए, लेकिन देवता बाध्य हैं। उनको जो व्यक्ति जिस प्रकार से उनकी पूजा करता है उसका फल देना होता है, भगवान बाध्य नहीं है। भगवान कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। गोपियों ने भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण किया, भगवान ने क्या दिया उनको, भगवान ने कुछ नहीं दिया। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा श्रम है, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। ये कहना ही सबसे बड़ी बात है, अगर भगवान के पास कुछ नहीं है देने के लिए तो जानना चाहिए कि गोपियों की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। जिनको भगवान कहें कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा श्रम है, उसी को आप मेरी तरफ से समझ लो। तो इसीलिए सूर्य ने कहा मैं बाध्य हूं देना ही होगा। फिर एक पुत्र हुआ सूर्य के ही समान, कवच कुंडल पहने हुए। कुंती उस पुत्र का क्या करती, अभी विवाह नहीं हुआ था तो घबरा गई, जल्दी से उसने नदी में बहा दिया पुत्र को। दुख तो हुआ क्योंकि जब पुत्र आया तो मात्र स्नेह तो था, एक माँ का प्रेम, लेकिन समाज के नियमों के अनुसार वो नहीं चाहती थी कि जीवन भर उन्हें और उनके पुत्र को ऐसा कुछ सहना पड़े, इसीलिए उन्होंने उसको पानी में बहा दिया। तो फिर ये जब कथा उन्होंने पांडु महाराज को बताई तो पांडु महाराज ने कहा तुम देवताओं का आह्वान करो। तो फिर एक एक करके पहले धर्मराज, और जब वो पुत्र उत्पन्न हुआ युधिष्ठिर, तो ये जो नाम भी थे ये सारे आकाशवाणियों से हुए नाम। जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ आकाशवाणी हुई ये बड़ा ही धार्मिक होगा, सत्यवान होगा और इसका नाम युधिष्ठिर होगा, ये धर्मराज का अंश था। और फिर पांडु महाराज चाहते थे कि एक शक्तिशाली पुत्र हो, वायुदेव को बुलाया और फिर भीम। वैसे भीम जिस दिन उत्पन्न हुए थे उसी दिन दुर्योधन भी उत्पन्न हुए थे, दोनों इस तरफ, यहां पर दुर्योधन वहां पर भीम। तो भीम का जन्म हुआ, आकाशवाणी हुई कि बहुत शक्तिशाली होगा, 10,000 हाथियों का बल होगा इसमें और इसका नाम भीम होगा। और उनके बल की चर्चा, एक समय कुंती महारानी बैठी थी, अचानक उन्होंने एक शेर को देखा जंगल में, तो ये सब स्वाभाविक था, दिख जाते थे, तो घबरा गई, उठी, बैठी हुई थी एकदम उठी वो, और भूल गई कि उनकी गोदी में उस समय भीम थे, छोटे से बालक, अभी अभी जन्म हुआ था। तो शेर को देखकर घबरा गई और एकदम उठी, और जैसे ही उठी तो जो गोदी में भीम थे वो उठकर गिर गए नीचे उनकी गोद से। घबरा गई कुंती महारानी की अब क्या होगा मेरा पुत्र, क्योंकि नीचे एक बहुत कठोर शिला थी पर्वत। तो जैसे ही भीम गिरे कुंती महारानी दौड़ी उनकी ओर, तो देखा तो भीम तो बड़े आराम से हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जहां गिरे थे वो सारी शिला चूर चूर हो गई थी पूरी। तो भीम ने बचपन से ही दिखलाया कि कितनी शक्ति उनके अंदर, वो सारी शिला चूर चूर हो गई। तो फिर ऐसे इंद्र के द्वारा अर्जुन उत्पन्न हुए, और फिर माद्री ने भी पांडु महाराज से कहा कि मैं भी संतान चाहती हूं। तो फिर अश्विनी कुमारों के द्वारा दो पुत्र उनको भी प्राप्त हुए, नकुल और सहदेव। तो इस तरह 5 पुत्र हुए। वैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग सुन रहे हैं कि पुत्र हुए, देवता आए, या फिर हम लोग द्रोणाचार्य के जन्म की कथा सुने या कृपाचार्य की जन्म की कथा सुने, बड़ी अजीब है। कृपाचार्य का जन्म किसी मां के गर्भ से नहीं हुआ, द्रोणाचार्य का जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ, तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। ये हो सकता है, ये संभव है, ये संभव है, क्योंकि ये सारे लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इनका जन्म साधारण व्यक्तियों के जैसे ही हो ये जरूरी नहीं है। द्रोणाचार्य स्वयं बृहस्पति हैं जो आए यहां पर, कृपाचार्य आए, या ये जो पांडव हम लोग देख रहे हैं, ये भी सारे देवताओं हैं, देवताओं के अंश हैं। तो इसलिए कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए इनका जन्म भी ऐसा ही है। कृपाचार्य और उनकी बहन कृपी दरअसल शांतनु महाराज को मिले थे जंगल में। इनका जन्म हुआ था, एक बहुत महान ऋषि थे शरदवान। एक समय इन्होंने एक अप्सरा को देखा और अप्सरा के प्रति आकर्षित हो गए। जंगल में थे, वन में थे, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कोई कहता है कि कहीं पर एक स्थान पर वर्णन है कि उस अप्सरा का नाम जनपदी था, कोई कहते हैं उर्वशी थी। खैर कोई भी रही हो, तो उनको देखकर ही उनके मन में काम वासना आई और उनकी शक्ति गिर गई, जिस कारण से जहां पर गिरे बस वहीं पर दो बच्चे उत्पन्न हो गए। और वो उस समय वहां से चले गए, शांतनु महाराज वहां पर आखेट के लिए गए थे, और उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की अभी अभी जन्म लिए हैं और कोई देखने वाला नहीं उनको। तो उन्होंने उनके ऊपर कृपा की और अपने महल में ले आए और उनका पालन पोषण किया, और इसीलिए उनका नाम हुआ कृपा, क्योंकि शांतनु महाराज की कृपा उनके ऊपर हुई और उनकी बहन को कहा गया कृपी। अब ये भी कोई साधारण नहीं है, कृपी इन ये तारा है, तारा देवी। तारा देवी ये बृहस्पति की पत्नी है, तो उन्होंने जन्म लिया कृपी के रूप में, बृहस्पति ने जन्म लिया द्रोणाचार्य के रूप में, आगे चलकर दोनों का विवाह हुआ। तो इस तरह ये जो चीजें हम लोग देखते हैं कि द्रोणाचार्य का भी जन्म ऐसे ही हुआ, द्रोण में हो गया, कोई मां के गर्भ में नहीं हुआ, कृपाचार्य का ऐसे हो गया, आगे और भी बहुत सारे वर्णन हैं लोगों के ऐसे ही जन्म हुए। तो इससे हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए कि ये सारी ये काल्पनिक कथाएं हैं, ऐसा होता नहीं है, ये सारे देवताओं के अंश हैं, इसीलिए वो ऐसे जन्म लेते हैं। तो फिर पांचों पांडवों का जन्म हुआ, और एक समय पांडु महाराज माद्री के प्रति बड़े आकर्षित हो गए और अपने आप को रोक नहीं पाए, और फिर उन्होंने संग किया, जिसके कारण उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई श्राप के कारण। माद्री उस शरीर को लेकर चिल्लाने लगी, रोने लगी। कुंती महारानी बच्चों को लेकर भागते हुए आई, और फिर बच्चों को थोड़ा दूर रखकर उन्होंने देखा तो शरीर में प्राण ही नहीं है। तो वो डांटने लगी, बहुत चिल्लाने लगी माद्री को कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम हत्यारी हो, तुमने हत्या की है अपने पति की। तो वो कहने लगी कि नहीं, मैंने तो मना किया था, लेकिन वो रुके नहीं। तो खैर फिर ये हुआ कि अब उनको अग्नि देनी है, तो कुंती महारानी ने कहा कि मैं बड़ी हूं और मैं इनके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी और तुम बच्चों को संभालो। तो माद्री ने कहा कि नहीं, अपराध मुझसे हुआ है, मैंने अपराध किया है, मेरे कारण इन्होंने देह त्यागा है, और वैसे भी मैं पांच बच्चों को संभालने के योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, आप कर सकती हैं, इसलिए आप रुकिए और मैं इनके साथ। उन्होंने और एक भी कारण दिया, उन्होंने कहा कि मृत्यु के समय वो मेरे साथ भोग करना चाहते थे, संग करना चाहते थे, कर नहीं पाए, इसलिए मैं उनके साथ जाऊंगी ताकि उनकी वो इच्छा भी पूरी हो जाए। तो फिर कुंती ने स्वीकार किया और फिर अग्नि जलाई गई, पांडु महाराज के शरीर का दाह संस्कार किया गया और उसी अग्नि में माद्री देवी भी प्रवेश कर गईं। ये प्रथा थी पहले कि जब पति की मृत्यु होती थी तो पत्नी भी उसमें प्रवेश कर जाती थी अपनी इच्छा से, जबरदस्ती नहीं। इसे सती प्रथा कहते थे। अंग्रेजों के समय में इसको बंद कराया गया, क्योंकि ऐसा हुआ था कि जो पत्नी नहीं भी चाहती थी उसको जबरदस्ती डाल दिया जाता था, तो ये गलत था, तो इसलिए इस प्रथा को बंद कराया गया। तो उस समय कुंती महारानी अपने 5 छोटे बच्चों के साथ जंगल में थी, तो सारे ऋषि मुनियों ने यह सोचा कि अब इनको ले जाना चाहिए और हस्तिनापुर में उनको लेकर आना चाहिए, वहां पर उनके स्थान पर छोड़कर। तो फिर उन्होंने थोड़े से जो अवशेष पांडु महाराज और माद्री के थे उनको लिया, 5 बच्चों को, कुंती महारानी को, और बहुत सारे ऋषि मुनि, एकाद नहीं बहुत सारे, कहा गया है हजारों, वो लोग वहां पर आए। अच्छा, उससे पहले यहां पर कौरवों का जन्म हो चुका था। दरअसल ऐसा हुआ था कि कुंती महारानी के पहले गांधारी देवी ये गर्भवती हुई थी, तो गांधारी को हृदय में ये संतुष्टि थी कि भले ही मेरे पति वो राजा नहीं बन पाए, हमेशा प्रतिनिधि रहे, लेकिन क्योंकि मैं पहले गर्भवती हुई हूं, मेरा पुत्र पहले होगा तो मेरा पुत्र राजा बनेगा। तो उस समय करीब 1 वर्ष हुआ था, 1 वर्ष गर्भवती होकर हो गया था इन्हें, कि इन्हें समाचार मिला कि वन में युधिष्ठिर महाराज का जन्म हो गया है। अभी वो गर्भवती थी, और उससे पहले व्यास देव ने, और विवाह के पहले दुर्वासा मुनि ने उन्हें वचन दिया था कि तुम्हें 100 पुत्र होंगे, व्यास देव ने भी ऐसा ही वचन दिया था। तो जब वो गर्भवती थी और उन्हें पता चला कि युधिष्ठिर का जन्म हो गया, अर्थात बड़ा जो कौरवों में है वो आ चुका है, तो उनको बहुत क्रोध आया, द्वेष हो गया उन्हें कुंती से, और उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने पेट पर बहुत जोर से मारा। और फिर जब उसके बाद संतान उत्पन्न होने का समय आया, तो संतान के स्थान पर केवल एक मांस का टुकड़ा बाहर आया। कुंती महाराज द्रौपदी ने, गांधारी ने देखा, और गांधारी ने सोचा कि ये मेरा ही कर्म है, मैंने खुद ही ऐसा किया है जिसके कारण मुझे ये देखना पड़ रहा है, तो खैर अब इसका क्या करना है, इसको पानी में फेंक देते हैं। तो उसी समय व्यास देव वहां पर आए, और व्यास देव ने उनसे कहा कि ये क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा, व्यास देव, आपका कहा हुआ असत्य हो गया, आपने कहा था मुझे 100 पुत्र होंगे, लेकिन ये देखिए ये हुआ है। तो व्यास देव ने कहा कि मेरा कहा हुआ कभी असत्य नहीं होता, मैं जो कहता हूं वो सत्य है। व्यास देव ने भागवत में जो कहा है वो सत्य है, महाभारत में जो कहा है वो सत्य है। उन्होंने कहा, मैं जो कहता हूं वो सत्य होता है, ये हो नहीं सकता, तो अब तुम ऐसा करो, ठंडा पानी लाओ और इसके ऊपर डालना प्रारंभ करो, और 100 मटके मंगाओ और उसको घी में भर दो, और हरेक मटके में इस बाद में इसके 100 टुकड़े कर हरेक मटके में डाल देना। तो गांधारी ने देखा कि जैसे ही वो पानी छिड़कने लगी, वो जो मांस का टुकड़ा था अपने आप 100 टुकड़ों में विभाजित होने लगा, और फिर उन टुकड़ों को रख दिया गया उन मटकों में, और फिर 2 साल तक वो रहे, और फिर 2 साल के बाद सबसे पहले उसमें से दुर्योधन प्रकट हुआ। जब दुर्योधन प्रकट हुआ, महाभारत वर्णन करते हैं कि वो गधे की तरह चिल्लाने लगा। धृतराष्ट्र बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये मेरे पुत्र को क्या हुआ है। तुरंत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, सारे सलाहकारों को बुलाया, और उनसे पूछा, जिसमें विदुर भी थे, भीष्म भी थे, तो उन्होंने प्रश्न किया कि ये मेरा पुत्र है, ये पैदा होते ही, क्योंकि जब पैदा हुआ वो गधे की तरह चिल्लाने लगा, तो जितने भी आसपास सियार लोमड़ी गधे थे वो लोग भी साथ हो लिए उसके, तो फिर वो बड़ी भयानक आवाज हो गई, धृतराष्ट्र घबरा गए। तो फिर धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, तो ब्राह्मणों ने और विदुर इत्यादि ने उनसे कहा कि ये जो सूचक है, ये सूचित करता है कि ये बालक आपके सारे वंश का नाश करेगा अकेला, तो इसलिए अच्छा होगा कि आपको राजा की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने वंश को बचाने के लिए इसकी हत्या कर देनी चाहिए, ये हमारी सलाह है, ये हम लोग आपको सुझाव देते हैं कि आप अभी इसकी हत्या कर दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तो इंतजार कर रहा था मेरा पुत्र हो, अब हो तो मैं कैसे उसका गला घोट दूं। धृतराष्ट्र ने स्वीकार नहीं किया। तो फिर ऐसे दुर्योधन का जन्म हुआ, और उसके बाद 1 महीने के अंदर बाकी सारे पुत्रों का भी जन्म हुआ, 100 पुत्र और 1 पुत्री।
विशाला। दरअसल 100 पुत्र जब हुए थे, जिस समय ऐसा वर्णन है कि जिस समय पुत्र हो रहे थे या वो जो मांस का टुकड़ा था वो विभाजित हो रहा था, गांधारी के हृदय में एक पुत्री उत्पन्न करने की इच्छा आ गई। एक ऐसा प्रेम जो पुत्री के प्रति होता है, तो उसको देखकर जब व्यास देव को उनको ये समझ में आया, ये पता चला, तो उन्होंने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जब 100 भागों में बांट दिया था तो एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था, तो उन्होंने कहा इससे तुम्हारी पुत्री उत्पन्न होगी, इसलिए और एक मटका मंगाया गया था जिसमें दुशाला, तो दुशाला सबसे अंत में वो प्रकट हुई। तो ऐसे 100 पुत्र और एक पुत्री उनकी हुई। उस पुत्री का आगे चलकर विवाह जयद्रथ से किया था, जयद्रथ की कथा भी हम लोग सब जानते हैं। तो फिर ऐसे कौरव यहां पर थे जो पैदा हो चुके थे 100 पुत्र, और फिर ऐसे समय में अब पांचों पुत्रों को लेकर कुंती महारानी आई और सारे ऋषि राज्य की सीमा पर रुक गए, अंदर प्रवेश नहीं किया, और उन्होंने संदेश भेजा। जैसे ही राजा को संदेश मिला कि इतने सारे ऋषि मुनि वो आए हैं, तो सब लोग आए, धृतराष्ट्र आए, भीष्म आए, विदुर आए, जितने अन्य मंत्री थे सब आए स्वागत करने के लिए। और जब लोगों को भी पता चला, नागरिकों को, कि कुंती महारानी और उनके 5 पुत्र आए हैं, तो सारे लोग उमड़ आए, सब देखना चाहते थे इन पुत्रों को। और फिर उन सब के सामने ऋषि मुनियों ने घोषणा की कि ये पांडु महाराज के पुत्र हैं, पांडव 5वां पुत्र, और ऐसे ऐसे पांडु महाराज का देहांत हो गया है और ये उनके अवशेष हैं। और ऐसा कहकर वो सारे ऋषि मुनि एक क्षण में वहां से गायब हो गए। तो फिर उस समय भीष्म ने बड़े भारी हृदय से पांडु के जो अवशेष थे और माद्री के, उनको एक रानी और राजा के सम्मान दिया। एक बहुत सुंदर रथ सजाया गया जिस पर उनके अवशेषों को रखा गया, और फिर उनकी एक यात्रा निकली, अंतिम यात्रा। देखिए भीष्म के लिए कितना कष्ट था, वो इतने बड़े थे, लेकिन ऐसी अवस्था में उनको पहले चित्रांगद, विचित्र वीर्य अपने भाइयों का, फिर अब उनके पुत्रों का, उनके मृत शरीर को देखना पड़ रहा है, उनका अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। तो ये दुख था, ये कष्ट था उनके लिए, जो उनको सहन करना था अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। तो फिर भीष्म ने ये उनका अंतिम संस्कार किया, उनको अग्नि दी गई, सारे संस्कार पूरे हुए। और फिर उस समय में जब पांडव वहां पर आ गए और कौरव भी अब वहां पर थे, तो व्यासदेव सत्यवती के पास आए और उन्होंने सत्यवती से कहा कि हे माता, अब समय बहुत बुरा आने वाला है। अब तक ठीक था, आप यहां पर रह रही थीं, सुरक्षित थीं, आपने कोई खराब चीज नहीं देखी, लेकिन अब समय बहुत बुरा आने वाला है। आपके वंश में आपस में भाइयों में युद्ध होगा, और केवल युद्ध नहीं, बहुत सारी बुरी बातें, गलत गलत बातें भी होंगी, तो इसलिए आपके लिए अब सही नहीं है यहां रहना, आप अभी तुरंत इस स्थान को त्याग दीजिए। तो फिर सत्यवती ने अपने पुत्र की बात को स्वीकार किया और अंबिका और अंबालिका को लेकर फिर वो वन में चली गई, और आगे वर्णन है कि उन्होंने जाकर अपना देह वहां पर त्याग दिया काफी समय रहने के बाद। तो इस तरह से सत्यवती देवी वो वहां से चली गई, क्योंकि बुरा समय आने वाला था, ऐसे व्यासदेव ने घोषणा की थी। तो अब यहां से प्रारंभ होगा दुर्योधन और विशेष करके धृतराष्ट्र। हम लोग सोचते हैं दुर्योधन ने सारी योजनाएं बनाई, लेकिन धृतराष्ट्र की योजना या कूटनीति, जिसके कारण वो पांडवों को नहीं चाहते थे कि पांडव मर जाएं, समाप्त हो जाएं, ताकि उनका राज्य बना रहे। तो कैसे पांडवों पर क्या क्या अत्याचार हुए, कैसे पांडवों ने उसको सहन किया, और भी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं इन कथाओं के बीच में, इसको हम लोग अगली बार श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।